जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है, वे परम शांत गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष हैं। उनके यश कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते, ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजदूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संतजनों के वचन से शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, संतजनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप यज्ञ और व्रत करते हैं उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं, इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ व्रत और तप करते हैं तो भी वे उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम है, उनको विषयों में निरसता है और उनका आचार शुभ है। हे राघव, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत कोमल सुंदर और स्निग्ध होता है उसी को संतों की संगति प्राप्त होती है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 5। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितना जगत जाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है वास्तव में कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी देह का नाम अंतर्वाहक शरीर है, वह संकल्प रूप सब जीवों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ अभ्यास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा है और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह जगत सब संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश रूप है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है, सो मन ही का संसरना है, वैसे यह जगत है मन के फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, जहां मन है वह दृश्य है और जहां दृश्य है वह मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो जावे। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सो ही मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त न होगा। जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध होगा। हे रामचंद्र जी, दृष्टा दर्शन दृश्य यह त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागे हुए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता। वह बाह्य देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, अंतर देखेगा तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है और उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे जब वायु की स्पंदता मिटती है तब वृक्ष के पत्रों का हिलना भी मिट जाता है। इससे मन रूपी दृश्य ही बंधन का कारण है। राम जी बोले, हे भगवान, यह दृश्य रूपी विसूची का रोग है, उसकी निवृत्ति कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वैताल जिसको लगा है उसकी निवृत्ति इस प्रकार होती है कि प्रथम तो विचार करके जगत का स्वरूप जानो, उसके अनंतर जब आत्मपद में विश्रांति होगी तब तुम सर्वात्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, दृश्य भ्रम जो तुमको भासता है उसको मैं उत्तर ग्रंथ से निवृत्त करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सुनिए, यह दृश्य मन से उपजा है और इसका सद्भाव मन में ही हुआ है। जैसे कमल का उपजना कमल के बीच में है, वैसे ही संसार का उपजना स्मृति में होता है। वह स्मृति अनुभव आकाश में होती है। हे रामचंद्र जी, स्मृति पदार्थ की होती है जिसका अनुभव पहले होता है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो संकल्प रूप है, कोई पदार्थ सत्रूप नहीं। जो वस्तु असत्रूप है उसकी स्थिरता नहीं होती और जो वस्तु सत्रूप है उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जितना कुछ प्रपंच भासता है सो असत्रूप है, मन के चिंतन से उत्पन्न हुआ है। जब फुरने से रहित हो तब जगत भ्रम निवृत्त होता है। हे रामचंद्र जी, पृथ्वी पर्वत आदि जगत असत्रूप न होते तो मुक्त भी कोई न होता। मुक्त तो दृश्य भ्रम से होता है। जो दृश्य भ्रम नष्ट होता तो मुक्त भी कोई न होता। पर ब्रह्मर्षि राजर्षि देवता इत्यादि बहुतेरे मुक्त हुए हैं। इस कारण कहता हूं कि दृश्य असत्य रूप मन के संकल्प में स्थित है। हे रामचंद्र जी, एक मन को स्थिर करके देखो, फिर अहम त्वम आदि जगत तुमको कुछ न भासित होगा। चित्त रूपी आदर्श में संकल्प रूपी दृश्य मलिनता है। जब मलिनता दूर होगी तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। हे रामचंद्र जी, यह दृश्य भ्रम मिथ्या उदय हुआ है। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्नपुर वैसे ही यह जगत भी है। जैसे शुद्ध आदर्श में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्त रूपी आदर्श में यह दृश्य प्रतिबिंबित है। मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है सो आकाश रूप है, उसमें कुछ पर्वत का सद्भाव नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का सद्भाव नहीं। जैसे बालक को ब्रह्म में परछाई में वैताल भासित होता है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है। वास्तव में जगत कुछ भी नहीं। राम जी ने पूछा, हे रामचंद्र जी, न कुछ मन उपजा है और न कुछ जगत उपजा है, दोनों असत रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से और समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित और पूर्ण है, और उसमें जगत का अत्यंत अभाव हुआ है। हे भगवान, आपके वचन ऐसे है जैसे कहिए कि बंध्या के पुत्र ने पर्वत चूर्ण किया, शशे के श्रृंग अति सुंदर है, रेत में तेल निकलता है और पत्थर की शिला नृत्य करती, व मूर्ति का मेघ गर्जन और पत्थर की पुतलियां गान करती है। तुम कहते हो कि दृश्य कुछ उपजा नहीं और है ही नहीं, और मुझको ये जरा मृत्यु आदि विकारों सहित प्रत्यक्ष भासते हैं। इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनों का सद्भाव नहीं स्थित होता। कदाचित तुम्हारे निश्चय में इसी प्रकार है तो अपना निश्चय मुझको बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हमारे वचन यथार्थ है, हमने असत कदाचित नहीं कहा। तुम विचार के देखो, यह जगत आडंबर बिना कारण हुआ है। जब महाप्रलय होता है तब शुद्ध चैतन्य संवित रह जाता है और उसमें कार्य कारण कोई कल्पना नहीं रहती। उसमें फिर यह जगत कारण बिना फुरता है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न दृष्टि फुराती है और स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसी यह सृष्टि भी अकारण ही है। हे रामचंद्र जी, जिसका समवाय कारण और निमित्त कारण न हो और प्रत्यक्ष भासे, उसे जानिए कि भ्रांति रूप है। जैसे तुमको नित्य स्वप्न का अनुभव होता है और उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कार्य कारण सहित भासते हैं पर कारण बिना है, वैसे ही यह जगत भी कारण बिना है। इससे आदि कारण बिना ही जगत उपजा है। जैसे गंधर्व नगर, संकल्पपुर और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत भासता है, कोई पदार्थ इसमें सत नहीं। जैसे स्वप्न में राजमहल और नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, सो किसी कारण से तो नहीं उपजे, केवल आकाश रूप मन के संसरने से सब भासते हैं, वैसे यह जगत चित्त के संसरने से भासता है। जैसे स्वप्न में और स्वप्न भासता है और फिर उसमें और स्वप्न भासता है, वैसे यह जगत भासता है, और वैसे ही जगत जंजाल मन की कल्पना से भासता है। हे रामचंद्र जी, चलना दौड़ना, देना लेना, बोलना सुनना, रुंधना इत्यादि विषय और राग द्वेष विकार सब मन के फुरने में है। आत्मा में कोई विकार नहीं। जब मन उपशम होता है तब सब कल्पनाएं निवृत्त हो जाती है। इससे संसार का कारण मन ही है। राम जी बोले, हे भगवान, मन का रूप क्या है? वह तो माया रूप है। इसका होना जिससे है सो कौन पद है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत का अभाव हो जाता है, और पीछे जो शेष रहता है सो सतरूप है। सर्ग के आदि में भी सतरूप होता है, उसका नाश कदाचित नहीं होता। वह सदा प्रकाश रूप परम देव, शुद्ध परमात्मा तत्व अज अविनाशी और अद्वैत है। हे रामचंद्र जी, उसको वाणी नहीं कह सकती, वही पद जीवन मुक्त पाता है। हे राघव, आत्मा अधिक शब्द कल्पित है, स्वाभाविक कोई शब्द नहीं प्रवर्तता। शिष्य को बताने के लिए शास्त्रकारों ने देव के बहुत नाम कल्पे हैं। मुख्य तो देव को पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी उसी को ब्रह्म कहते हैं और विज्ञानवादी उसी को विज्ञान से बोध कहते हैं। कोई कहते हैं कि निर्मल रूप है, शून्यवादी कहते हैं शून्य ही शेष रहता है। कोई कहता है प्रकाश रूप है, जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशते हैं। एक उसको वक्ता कहते हैं कि आदिदेव का वक्ता वही है, और स्मृति कर्ता कहते हैं कि सब कुछ वह स्मृति से करने वाला है और सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ है। इससे सबका कर्ता सर्व आत्मा है। हे रामचंद्र जी, इसी तरह अनेक नाम शास्त्रकारों ने कहे हैं। इन सबका अधिष्ठान परम देव है और अस्थि आदि षड विकारों से रहित शुद्ध चैतन्य और सूर्यवत प्रकाश रूप वही देव सब जगत में पूर्ण हो रहा है। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी सूर्य है और ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि उसके किरणें हैं। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग बुदबुदे होकर लीन होते हैं और सब पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता है और सबको सत्ता देने वाला है। हे रामचंद्र जी, वृक्ष आत्म सत्ता से उपजता है, आकाश में शून्यता उसी की है और अग्नि में उष्णता, जल में द्रवता और पवन में स्पर्श उसी का है। निदान सब पदार्थों की सत्ता भी वही है। हे रामचंद्र जी, वृक्ष आत्म सत्ता से उपजता है, आकाश में शून्यता उसी की है और अग्नि में उष्णता, जल में द्रवता और पवन में स्पर्श उसी का है। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है। मोरों के पंखों में रंग आत्मसत्ता से ही हुआ है, पत्थर में मूंगा और पत्थरों में जड़ता उसी की है। स्थावर जंगम जगत का अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी चंद्रमा की किरणों से ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु उत्पन्न होती है। वह चंद्रमा शीतलता और अमृत से पूर्ण है। ब्रह्म रूपी मेघ है, उससे जीव रूपे बूंदे टपकती है। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे जगत प्रकट होता है और फिर छिप जाता है। हे रामचंद्र जी, सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता और वह नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद है। सब सत्य असत्य रूप पदार्थ उसी आत्मसत्ता से हुए हैं। हे रामचंद्र जी, उस देव की सत्ता जड़ पुर्यष्टक चैतन्य होकर चेष्टा करती है। हे रामचंद्र जी, घट घट में वह देव है पर अज्ञानी को दूर भासता है। स्नान दान तप आदि से वह प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान से ही वह प्राप्त होता है, कर्तव्य से प्राप्त नहीं होता। जैसे मृत तृष्णा की नदी भासती है, वह कर्तव्यता निवृत्त नहीं होती है, केवल ज्ञातव्य से ही निवृत्त होती है। वैसे ही जगत की निवृत्ति भी आत्मज्ञान से ही होती है। हे रामचंद्र जी, कर्तव्य भी यही है जो ज्ञातव्य रूप है, अर्थात जिससे ज्ञातव्य रूप की प्राप्ति हो। श्री राम जी बोले, हे भगवान, जिस देव के जानने से पुरुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता, वह कहाँ रहता है और किस तप और क्लेश से उसकी प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, किसी तप से उस देव की प्राप्ति नहीं होती, केवल अपने पौरुष और प्रयत्न से ही उसकी प्राप्ति होती है। जितना कुछ राग द्वेष काम क्रोध मत्सर और अभिमान सहित तप है वह निष्फल दंभ है, इनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, इसकी परम औषध सत्संग और सत्शास्त्र का विचार है, जिससे दृश्य रूपी विसूची का निवृत्त होती है। प्रथम इसका आचार भी शास्त्र और लौकिक अविरुद्ध हो, अर्थात शास्त्रों के अनुसार हो और भोग रूपी गड्ढे में न गिरे। दूसरे संतोष संयुक्त यथालाभ संतुष्ट होकर अनिश्चित भोगों को प्राप्त हो, और जो शास्त्र अविरुद्ध हो उसका ग्रहण करे, और जो विरुद्ध हो उसका त्याग करे, इससे दीन हो, ऐसे उदार आत्मा को ही शीघ्र आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सत्शास्त्र है। संत वह है जिसको सब लोग श्रेष्ठ कहते हैं, और सत्शास्त्र वही है जिसमें ब्रह्म निरूपण हो। जब ऐसे संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य श्रुति विचार द्वारा अपने परम स्वभाव में स्थित होता है, तब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी उस पर दया करते हैं और कहते हैं कि यह पुरुष पर ब्रह्म हुआ है। हे रामचंद्र जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार निर्मल करता है और दृश्य रूप मैल का नाश करता है। जैसे निर्मली रेत से जल का मैल दूर करती है, वैसे ही वह पुरुष निर्मल और चैतन्य हो जाता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह देव जो तुमने कहा कि जिसके जानने से संसार बंधन से मुक्त होता है, कहां स्थित है और किस प्रकार मनुष्य उसको पाता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह देव दूर नहीं, शरीर ही में स्थित है। नित्य चिन्मात्र सबसे पूर्ण और सर्व विश्व से रहित है। चंद्रमा को मस्तक में धरने वाले सदाशिव ब्रह्मा जी और विष्णु और इंद्र आदि, बल्कि सब जगत चिन्मात्र रूप है। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो अज्ञानी बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र है, तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, इस विश्व के चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को नहीं लांग सकते। इस चेतन का नाम संसार है, चेतन जीव है, संसार नाम रूप है। इससे जरा मरण रूप तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अहम से दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य होकर जो चेतता है सो अनर्थ का कारण है, और चेतन से रहित जो चैतन्य है वह परमात्मा है। उस परमात्मा को जानकर मुक्ति होती है, तब सब चेतनता मिट जाती है। हे रामचंद्र जी, परमात्मा के जानने से हृदय की चित जड़ ग्रंथि टूट पड़ती है, अर्थात अहम मम नष्ट हो जाता है। तब संशय छेदे जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मां विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।